के पॉइंट्स कौन बताएगा? आज एक अच्छा सा पॉइंट बताओ, लास्ट वाला बताया, गुड स्लोगन, अपने को इस शरीर में मेहमान समझो, है ना, मेहमान है आपका शरीर नहीं। और बाबा ने आज बहुत अच्छी बात बताया कि संगम युग की अगर स्मृति है, समय कौन सा है, उस समय के अनुसार संगम युग की अगर स्मृति है तो आप अपने आप को श्रृंगार करते हो, सारे कल्प के अंदर एक ही दफा ही स्वयं भाग्य विधाता आकर श्रृंगार करता है। किससे श्रृंगार करता है? ज्ञान रत्नों से। तो ज्ञान रत्नों के श्रृंगार कैसे करेंगे? सवेरे तो बाबा ने सुना दिया, आपने लिख लिया, सुन लिया, तो श्रृंगार कैसे होगा? तो अर्थात आपने जो सुना सारा दिन में एक एक पॉइंट का चिंतन किया, अपने आप को पढ़ाया, आज बाबा ने मुझे ये कहा, आज बाबा ने मुझे ऐसे करा कहा, ये कैसे करना चाहिए, तो ये सब चिंतन करते रहे। कोई मिला उनको वर्णन किया, क्योंकि दान भी करना है तब उच्च पद मिलेगा ना, तो दान तब करते हो अगर आपके स्मृति में है, धारणा है, याद है, तो दान कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आज किया, पूछ लो, क्योंकि सुनना तो आधा कल्प से हम बहुत कुछ सुनते आ गए, कहानी कितनी सुनी, ज्ञान कितना सुना, तो वही अभी भी वैसे करते रहेंगे तो जैसे कि वैसे होंगे, है ना। तो नहीं, परिवर्तन चाहिए, बहुत कुछ नहीं, कोई भी एक मुरली के पॉइंट ले लो, दो ले लो, सारा दिन में अपने आप को पढ़ाओ, क्योंकि शरीर से कर्म करना है, कहीं भी रहो, है ना, कर्म करना ही है, कर्म के बिगैर शरीर का काम नहीं है। तो कर्म करते हुए हमारे अंदर क्या चल रहा है, अपने आप को पूछ लो। हाँ, किसी देहधारी की याद आती है, नहीं ऐसा नहीं, क्योंकि कलयुग का अंतिम समय है, बहुत आत्माओं से हमारा हिसाब किताब है, वो आएगा। तो उसके लिए बाबा ने आज बहुत अच्छे एक पॉइंट बताया, बाबा ने कहा अंत तक माया आएंगी, है ना, तो उसके लिए क्या करो, कहा अंत तक माया आएंगी, क्या करो, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो क्या करना है, नहीं आएंगे नहीं, लेकिन माया आएंगी कहा, तो अंत तक माया आएंगी, अंत तक बाबा ने कहा अंत तक माया आएंगी, तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कुछ उपाय बताया, इसलिए कहा मुरली वो तो वरदान में आया है ना, तो बोलिए हम, तो उसके लिए, इसके लिए बाबा ने बताया अंत तक माया आएंगी, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो उसका बाबा निवारण देता है, तो निवारण सुनाया, क्या निवारण दिया, तो बाबा ने कहा तो माया को ऐसे उड़ाओ, कैसे, पुरुषार्थ करो, कहीं बाबा के बच्चे ऐसे माया करके रुकते नहीं है, है ना, कपड़े पर कर्म करते दाग लगता है, ऐसे छोड़ते नहीं, तुरंत साफ करते हैं, मिटाते हैं, ऐसे ही इस जीवन रूपी यात्रा में अंत तक माया आएंगी, कि कलयुग उनका राज्य है, तो लेकिन तीव्र पुरुषार्थ, पुरुषार्थ करके माया को उड़ाएंगे, भगाएंगे, तो कैसे भगाएंगे, वो विधि बताओ। हाँ, अगर आपने जो श्रृंगार किया, देखो एक दूसरे से लिंक है, बाबा जो ज्ञान सुनाते एक दूसरे को लिंक होता है, तो उस लिंक से याद करते, बाबा ने क्या कहा आज, किसके लिए कहा, क्यों धारणा करना चाहिए, क्यों श्रृंगार करना चाहिए, इसके लिए। तो वह श्रृंगार अगर आपने किया, याद है बुद्धि के अंदर, सारा दिन में मन में परिस्थिति आएंगी, कोई फोन आएगा, किसने कुछ शरीर छोड़ा, कोई बीमार हो गया, चलते चलते कोई कुछ हुआ, बहुत सारी समस्याएं, नहीं ऐसे नहीं, तो बुद्धि के अंदर ज्ञान है, बुद्धि मन को समझाती है, उड़ा देते उसको। हाँ, ये बाबा ने उसके लिए कहा ड्रामा, ये ड्रामा के अंदर पहले भी हुआ था, अभी भी हो रहा, होता रहेगा, है ना, होगा वो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो कर सकते हो वो करेंगे उपाय, है ना, तो समझाएंगे, तो समझाने के लिए ज्ञान से अपसेट नहीं होंगे, नहीं तो कुछ ज्ञान नहीं है, तो परिस्थिति आएंगी, परिस्थिति माया अलग अलग रूप से आएंगी, अपने स्वभाव संस्कार भी जागृत होंगे, हमारे अंदर भी संस्कार है ना, वो भी जागृत होंगे, न चाहते हुए ऐसे शांत स्वच्छ वातावरण में रहते हुए भी पुराने बातें ख्याल आती है, क्योंकि अंदर है, कहीं गया नहीं अभी तक, तो उसको यहां मिटाना है, तो मिटाएंगे कैसे, अगर ज्ञान का श्रृंगार किया हुआ है, अर्थात बुद्धि के अंदर ज्ञान की याद है, आज बाबा ने ये कहा, तो अपने आप से बात करते रहते हो, उसको कहते अंतर्मुखी। तन से कर्म करते रहो सारा दिन, जो भी है जितना भी है, तो कर्म करते करते, कर्म की अवस्था अलग है ना, कर्म शरीर से कर रहे हो और मन के अंदर ज्ञान का चिंतन अपने आप को समझाते हो, तब बाबा कहते हैं साधारण कर्म करते हुए भी उच्च पद पा सकते हो। कैसे? जैसे कर्म करेंगे वैसे होगा ना। जैसे आप कर्म करते हो, माताजी यहाँ भी रोटी बनाती, सब्जी काटते हो, यहाँ भी सेवा करते हो, घर में भी वही सेवा करते हो, तो दोनों में अंतर क्या है? वहां भी तो सेवा ही करते हो, वहां और तो कुछ नहीं करते हो, दोनों में अंतर क्या है? वहां खाना जब बनाते हो मेरे बेटे के लिए, पति के लिए और किसी का नाम, यहाँ बाबा को याद भी नहीं, बाबा को भोग लगने वाला है, कोई व्यक्ति नहीं आया, इनके लिए खाना नहीं बना रहे हो, इनके लिए वहां व्यक्ति आया, इनके लिए, इनके लिए थोड़े है, यहाँ बाबा को भोग लगने वाला है, बाबा की सेवा है। तो मन के अंदर अच्छा चिंतन करते जो सेवा करते हो वो भाग्य बनाता है, नहीं तो घर में भी सेवा करते हो यहाँ भी करते हो, अंतर क्या हो गया? तो यहाँ पदम कमाई जमा कैसी होती है? तन से कोई भी साधारण सेवा भी करो, लेकिन मन के अंदर किसका चिंतन चल रहा है? हाँ, क्या चिंतन चल रहा है? बाबा बाबा करते रहेंगे, हाँ बाबा आपकी सेवा करे, बाबा आपकी ऐसे करते रहेंगे, ओम नमः शिवाय करते रहेंगे, बाबा बाबा करते रहेंगे? नहीं, बाबा ने जो कहा श्रीमद् आज देता है, कल सवेरे दोबारा देगा, सारे दिन के लिए रोज पढ़ाता है, रोज नए नए पॉइंट सुनाता है। तो जो आज पढ़ाया वो अगर आपके मन में चिंतन चलता है, अपने आप को पढ़ाते रहते हो, आज बाबा ने ऐसे कहा, आज ऐसे करना चाहिए। कैसे कहा आज बाबा ने? देवताएं जैसे हंसते खुश रहते हैं, हर्षित रहते हैं, ऐसे देवताओं जैसा, तो ये श्रीमत है, आज सुनाया, कल दूसरा सुनाएगा, तो ये आज ही अभ्यास करना है। तो ये कौन करेगा? जिसके बुद्धि में अगर है तो बार बार कोई बात आएंगी, कली के हर कदम में काटे है, तो भी अपने आप को बार बार समझाते रहेंगे, समझाते रहेंगे तो बुद्धि स्वच्छ होती है, जो स्वच्छ बुद्धि है तो ज्ञान याद है। तो मन को समझाते हो, बड़े छोटों को समझाते हैं, बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने मन को कौन समझाएगा? मन तो हमारा है ना, औरों का तो नहीं है, किसी को पता नहीं मेरे मन में क्या चल रहा है, आपको देखते क्या विचार है, आपको पता है? मुझे पता है, तो मेरे मन को कौन समझाएगा? स्वयं को समझ, इसलिए बाबा कहता है संगम पर श्रृंगार करो अपने आप को। इसलिए कहते हैं जितना रोज एक एक मुरली के पॉइंट अपने अंदर जमा करते हो, चिंतन करके 30 दिन में 30 मुरली के पॉइंट आपके अंदर जमा हो गए, रोज एक ले लो। देखो रामायण में आता है, अंत में एक दफा आकाशवाणी हो गई, राम अकेला हो जाता है, सब अस्त्र खत्म हो जाता है, तो आकाशवाणी हो गई, राम तुम्हारे पास ये अस्त्र है, ये अस्त्र छोड़ो। कहां से आए अस्त्र? जब वो वनवास जा रहे थे तब बहुत साधु संतों ने उनको अस्त्र दिया, आगे जाके आपके जीवन में बहुत समस्या आएंगी, तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये अस्त्र ले लो, ये अस्त्र ले लो, है ना। तो उसने अंदर जमा किया है, जब विस्म परिस्थिति आती है विस्मृति हो जाता है, जैसे हम रोज, ये ज्ञान एक एक अस्त्र है, रोज एक एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा तो उसको लेके अंदर चिंतन करके जमा करो। जब संसार में जाते हो ऐसी एक परिस्थिति आती है तो बेहोश हो जाते हो, कुछ नहीं कर सकते है। तो बाबा टचिंग देता, टचिंग माना क्या देगा? सीढ़ी के अंदर सब भरा हुआ है, करंट देंगे तो आवाज आएगा ना, करंट नहीं दिया आवाज आएगा? खाली सीढ़ी है, हाँ चालू करो आवाज आएगा नहीं। तो बाबा टचिंग कहते हैं, बाबा की टचिंग, टचिंग माना क्या? शक्ति देता है, वो सर्वशक्तिवान है, अंदर भरा हुआ है। बच्चे उस दिन सुनाया था ये ऐसे करो, तुरंत याद आता, हाँ उस दिन हमने चिंतन करके जमा करके रखा हुआ, याद नहीं आती समय पर। घर में दवाई होती है, बीमारी होती है, पता ही नहीं चलती, याद ही नहीं आते, तो बाबा को बताते हो, बाबा टचिंग, बच्चे वहां दवाई रखी है वो ले लो, याद दिलाता है। अगर घर में दवाई रखेंगे तो याद दिलाएंगे ना, अगर नहीं है तो। तो इसलिए कहा कि ज्ञान को श्रृंगार, ज्ञान का श्रृंगार करो, जमा, श्रृंगार करने का अर्थ जमा करो। जमा कैसे होगा? चिंतन करो, वर्णन करो, औरों को सुनाते रहो, अपने आप चिंतन से नहीं होता है, वर्णन करना चाहिए और बढ़ता है। और आप भी एक सुनाएगा, राजू को एक सुनाओ तो राजू और एक सुनाएगा, है ना। एक दूसरों को सुनाओ, आदत डालनी चाहिए। नहीं तो अभी क्या हो रहा है, ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। आप कहेंगे मैंने सुना, लिख के रखा है, क्या करना है? जो ज्ञान में योग मुरली में हमको रस क्यों नहीं आ रहा, नींद आती है, बताना पड़ता अलर्ट बैठो, क्यों? कारण क्या है कि हमें ज्ञान का वैल्यू पता नहीं है। दूसरा, अगर खाना बनाने के खाने वाले हो तो खाना बनाएंगे ना, खाने वाले नहीं तो किसको खाना बनाएंगे। तो यहां आप हमारे अंदर एक चीज हो गया, मुरली सुनी हमने, लिख के रखा है हमारे पास, तो इसलिए सुनते, सब कुछ जानते हम, तो मुरली सुनते सुनते आलस्य आता है। अभी क्या करना है, वही तो बाबा कहता रोज, कल भी सुना था, अलबेलापन आलस्य आने का कारण, नींद आने का कारण। मुरली सुनते समय एक कल से शुरू करो, मुझे आज मुरली से अच्छा नया पॉइंट लेना है जो कभी नहीं सुनाया, वो लेके मुझे औरों को सुनाना है। दान करने की आदत डालो, वही की बात सुनाएंगे, कल ये सुनाया था वही सुना रहे आप, कुछ नया सुनाना है। और रोज मुरली के अंदर कुछ ना कुछ नया होता है, तो ऐसे तब मुरली के अंदर ध्यान रहता, ढूंढते हो आज बाबा नया क्या सुनाएगा, तो नींद नहीं आएंगी, व्यर्थ नहीं। उसको कहते हैं अटेंशन, उसको कहते हैं ध्यान से सुनना। अब होता है सुनना है, बैठे नियम है ना, तो नियम और के बैठे 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 नींद आएंगी, इंटरेस्ट नहीं है। क्या करना है, सुन के क्या करना है, सुन लिया, लिख भी दिया, क्या करना है, फायदा क्या है उसका? आलस अलबेलापन आने का कारण। इससे अगर मुक्त बनना चाहते हो, कल से एक आदत डालो। हमने अपने जीवन में देखा, अगर हमको किसी को सुनाना नहीं है, सुन लिया हमने, आराम से सुना, नोट भी कर दिया है हमारे पास, किसी ने पूछा क्या सुना था बताओ, तो सुन के फायदा क्या है। तो दान करने की आदत डालो, सवेरे सुनो, कोई भी मिला सवेरे से शाम तक मुझे एक दो तीन को जरूर आज के मुरली के पॉइंट सुनाना है। ये आदत डालेंगे, देना है तो जरूर लेना भी पड़ेगा ना, याद रखना पड़ेगा ना। कल आपकी परीक्षा लेंगे, आप बहन जी रोज पूछती थी, बहन जी आज बताओ, याद ही नहीं है, है ना। इसलिए मनुष्य को हरेक की अपनी इज्जत होती है ना। तब बाबा ने कहा ये आदत डालो कि मुझे सुनने के बाद दान जरूर करना है, तो सुनते समय अटेंशन रहेगा, ध्यान रहेगा कि आज नया पॉइंट, वही का वही नहीं, सारे मुरली के अंदर बाबा ने नया क्या सुना है वो नोट करना है, वो औरों को सुनाना है, दान करना है। ये अभ्यास चाहिए, ये आदत डालो आपके अंदर। देखो मुरली में कभी भी आपको नींद नहीं आएगी, न कभी उदासी आएंगी, न कभी व्यर्थ इधर उधर कौन आया कौन गया इधर उधर देखते नहीं रहेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे। स्कूल में भी ऐसे ही होता है, जो बच्चे हुशार नंबर वन आना है एकदम आगे आगे बैठते हैं और अलर्ट होके बैठते हैं, पूरा ध्यान लगा रहता है। क्यों? उनका लक्ष्य है मुझे पढ़ करके नंबर वन बनना है। जिसको लगता है पास होंगे हो गया तो बस, नाम के लिए स्कूल में आ रहे हैं, खेलने जाएंगे घूमने जाएंगे, तो उनका अटेंशन नहीं रहता है ना। तो यहां बाबा कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे साथ, नवाब नहीं बनना चाहिए, साधारण प्रजा भी तो चाहिए ना, नवाब बनना चाहिए, राजा बनना है तो बैठे रहना पड़ता ऊपर, प्रजा बनना अच्छा है। राजू आप क्या बनेगा बताओ, राजा बनना चाहिए कि प्रजा बनना है? प्रजा बनेंगे तो अच्छा, नीचे अच्छी तरह से बैठ सकते हो, राजा बने तो ऊपर सीधा बैठना पड़ता स्टेज पर, हाँ ऐसा है ना। तो इसके लिए पढ़ाई चाहिए, और ये सारे क्लब के अंदर इसी एक संगम युग पर मिलता, सारे क्लब में और कभी ऐसी पढ़ाई नहीं मिलेगी। कोई साधु का महावाक्य मिलेगा, कोई देवताओं का मिलेगा, वेद और कोई किसका मिलेगा, और किसका मिलेगा, भगवान के महावाक्य। तब बाबा ने कहा संगम की स्मृति चाहिए। और एक बताया, होली हंस कौन, उसकी निशानी बताऊं? हाँ, तो होली हंस वो है, तुरंत देखते उसको पता चलता है। तो कौन कब होगा वो होली, कौन होगा? अभी आप पूछो अपने आप से, होली है हम, होली माना बुद्धि स्वच्छ। तो बाबा ने कहा जो पवित्र है ना, तो बुद्धि स्वच्छ है। बुद्धि स्वच्छ कैसे होंगी, जिसके बुद्धि में जब योग में बैठते हो तो बाबा ने कहा दिव्य बुद्धि दाता हूं, एक बाप से अगर संबंध जोड़ते हो उसके शक्ति से बुद्धि स्वच्छ होती है। स्वच्छ बुद्धि है तो ज्ञान ठहरता है, याद रहता है। तो उसको कहेंगे जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, हंस जैसी है, तुरंत परखता है ये व्यर्थ है ये अच्छा है, मन में कुछ गलत विचार है तुरंत पता चलता है ये विचार ठीक नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो बुद्धि अपने आप को समझाते, मन में मन चंचल है, इधर उधर के विचार आते हैं, बुद्धि तुरंत जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, नहीं तो किसी को गुस्सा करके भी महसूस ही नहीं होता मैंने गुस्सा किया, क्योंकि महसूस कौन करता है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, गलत होते हुए भी रियलाइजेशन नहीं कहा, इसलिए कि जब तक महसूस नहीं किया तब तक परिवर्तन नहीं होता है। हम चाहते मेरा संस्कार परिवर्तन ही नहीं होता है, अपने आप होगा। हाँ हाँ, लेकिन पत्थर है आपको पता है, तो आप उसको परिवर्तन कैसे करेंगे, तो समझ कहां से लेके आएंगे, तो मुरली में याद रहेगा तो ना, आपने लिख के डायरी में रखा हाँ तो वो याद रहेगा तो होगा ना, अगर बुद्धि में याद रहेगा किसी को देखते व्यर्थ विचार आएगा, नहीं आने का तो नहीं आते, तुरंत कहेंगे बुद्धि नहीं, बाबा ने कहा संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ये कौन सिखाएगा करेगा, बुद्धि मन को, उसको कहते होली हंस। तो उसको पता चलता है ये पत्थर है, ये कंकर है और ये श्रेष्ठ है, बुद्धि ही महसूस कराती है। जिसकी बुद्धि स्वच्छ नहीं है तो क्या होगा, गलत विचार आते, ड्रामा में मेरा पार्ट ऐसा है, ऐसा विचार आता है, ऐसे सोचेंगे ना, मेरा पार्ट ऐसा है, मेरा तकदीर ऐसा है, ड्रामा ऐसा है, ऐसे सोचेंगे ना, तो ये अपने आप को कोसना हो गया। तब बाबा ने कहा ये त्यूर पुरुषार्थ संगम पर करो, माया आएंगी अंत तक आएंगी, उसको उड़ाओ। कौन उड़ाएगा, जो त्यूर पुरुष, त्यूर पुरुषार्थ क्या, पढ़ाई, पढ़ाई कौन करेगा, पढ़ाई में अटेंशन भी कब जाएगा, सवेरे शाम को दो दफा अच्छी तरह से योग विधि पूर्वक योग में बैठते हो तो बुद्धि स्वच्छ, संगम युग कर बाबा दिव्य बुद्धि को दिव्य करता है, क्योंकि बहुत जन्मों से पापों का कोटिंग हो गया है। जैसे घर में देखो दर्पण लगाते हैं, हवे में मट्टी है तो दर्पण खराब नहीं होता, मट्टी लगी हुई है, तो क्या करना चाहिए, सवेरे उठते एक कपड़ा घुमाओ स्वच्छ हो गया, तो बुद्धि कभी खराब नहीं होती है, लेकिन बुद्धि के ऊपर पापों का कोटिंग, जो गलत विचार करते हो, गलत कर्म करते हो, उसका कोटिंग होता है ना, उसको साफ करना है। तो अमृत वेले सवेरे शाम को विधि पूर्वक अगर बैठते हो, विधि क्या है बाबा ने बताया योग करने की, हाँ पहला ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ईश्वरीय विश्व नंबर वन सहज विधि है, नहीं तो सारी दुनिया योग करती है, सारी दुनिया के सब लोगों ने सुना है कितने सालों से, लेकिन यहाँ शिव बाबा ने आके राजयोग कौन सा कि पहले आत्मा समझो। तो आत्मा समझने के लिए जब भी योग में बैठते हो तो आत्म चिंतन करना चाहिए, नहीं तो शरीर की स्मृति रहती है, शरीर का एक भान रहता है कि सारा दिन सारे कलप शरीर में रहे ना, वो एकदम निकलने वाला नहीं है। कम से कम जब योग में बैठते हो तो आत्म चिंतन करो, आत्मा को स्वच्छ करना है, सत्संग से सदगति। शिव बाबा को याद किसके लिए, कोई शरीर की बीमारी मिटाने के लिए नहीं, वो डॉक्टर ठीक करेगा, है ना, आत्मा की। बाबा ने कहा पतित आत्मा को मैं पावन करता हूं, तो आत्मचिंतन पहले करो, मैं कौन कौन सी आत्मा हूं, मेरा रूप कैसा, मेरे गुण से चिंतन करते करते फिर बाबा को याद करो। बाबा कौन, शिव बाबा पवित्रता का सागर है। बाबा ने कहा बच्चे मेरे जैसे बनेंगे तो मेरे साथ जाएंगे, अगर मेरे जैसे नहीं बने तो क्या होगा, बारात के रूप में पीछे पीछे जाना पड़ेगा, है ना, तो बारात में जाना अच्छा है ना, हाँ तो बाराती बनना अच्छा है। बहन जी कहती बाराती बनने के पीछे जाएंगे, नहीं बनना है, पलकों पर बैठेंगे तो इतना हल्का बनना पड़ेगा ना, पलकों में वो बैठेगा, हल्का बनना पड़ेगा, हल्का मीन्स जिसके अंदर कोई भी पाप नहीं है ना। कैसे पता चलेगा आपके अंदर पाप है नहीं, स्वप्न बताता है, जब आप रात को सोते हो स्वप्न अंदर संस्कार है वो स्वप्नों में दिखाई देता है, नहीं तो स्वच्छ है, कब सोए कब उठे पता ही नहीं, अंदर कुछ भी नहीं सफाई है, फिर किसी को देखने के बाद सुनने के बाद विचार चलते है ना, तो ये मन में विचार है, मन अभी सोचता है, पहले वाले पहले स्वप्नों में आता है, तो अंदर की सफाई चाहिए उसको, योग अग्नि से अंदर की सफाई। सारा दिन में ज्ञान का चिंतन वर्णन, अपने आप को समझाते और चिंतन का, मन स्वच्छ रहेगा, ये दोनों स्वच्छ है तो हल्का है, शरीर का भान नहीं, मैं तो व्यर्थ विकल्प आने का कारण, व्यर्थ क्यों आ रहा है, खाली मन शैतान का काम करेगा, है ना, कि किसी को देखा रही ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों चलता है, दूसरों को देखते विचार आएगा, आदत बनी है। इसलिए बाबा ने एक व्यवस्था बनाई यहाँ, कौन सी बताओ, कि दूसरों को देखते माताजी को देखते आएगा विचार आएगा ना, माताजी है ना, पिताजी तो नहीं कहेंगे, तो उसके बाबा ने एक व्यवस्था बनाया। आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, क्या दिखाया कि योग में जब बैठते हो आंखें खोल के बैठो, तो कोई बहन जी बैठी है, कोई भाई बैठा है योग रखे, उनसे योग लगाना है तो क्यों बिठाया उनको, तो बाबा को याद करना है, योग में एक दूसरा क्यों बैठता है, हाँ नहीं, बाबा को याद करें, क्यों बिठाया बाबा ने, बाबा के तीन प्रकार के बच्चे हैं, एक नंबर वन, एक नंबर टू, एक नंबर थ्री, एक को योग कैसे करना पड़ता है, वो आता है बैठता है अपने आप आत्मा समझ के बाबा को याद करता है, और एक बहन जी आके बैठती है, बैठते आराम से बैठते देखते हैं, कल मुझे ये काम करना है, कल उसको फोन करना है, व्यर्थ गलत विचार करती है, तो उसके लिए क्या करे, उसके लिए बाबा ने गीत बजाया। ये गीत योग में क्यों बज रहा है, किसके लिए बज रहा है, कहीं बाबा के बच्चे है यहाँ बैठे बैठे व्यर्थ चिंतन करते हैं, क्योंकि उनकी आदत है, उनको पता ही नहीं है कैसे योग करना है, नया आए है ना, तो उनके लिए वो गीत बजाया है। तीसरा एक है, अच्छे तरह से बैठते हैं, कौन आया कौन गया इधर उधर देखते रहेंगे, तो उनके लिए क्या करे बताओ, उनके लिए सामने बिठाया, ये कोई देख रहा मुझे, कोई देख रहा है, अलर्ट हो जाता है, कोई देखने वाला है ना, इसलिए बाबा, दूसरी बात ये एक हो गया, दूसरी दृष्टि देने का क्यों रखा, कोई बिठाया कि मैं इनको देख रहा हूँ, बहन जी को लगेगा मैं इनको ही देख रहा हूँ, इनको देखते रहो खुले आंख, बाबा का चित्र बाबा कमरे में बैठते भी हो लेकिन बाबा ऊपर है, यहाँ नहीं है, इनको देखते भी इनका चिंतन नहीं कर रहे हो, आप आत्म चिंतन करते हो, परमात्म चिंतन करते हो, तो ये आंखें खोल के, नहीं तो सबको लगा आंखें बंद करके अच्छा योग लगता है, दो मिनट के बाद नींद आ जाती है, आंखें बंद कब करते हो, सोते समय है ना, योग में बैठ के आंखें बंद करके बैठेंगे अच्छा योग लगता है, दो तीन पांच दस मिनट के बाद धीरे धीरे नींद आएंगी, क्यों आंखें बंद करते हैं, अभी सामने बैठे इनको देखेगा तो इनका विचार आएगा ना, क्योंकि अंदर क्या करना चाहिए विधि पता नहीं है, जो नए नए आते हैं आके बैठते को देखना, इधर बैठेंगे दो मिनट बैठेंगे उठ के जाएंगे, उनको योग में बैठ के क्या करना है, क्यों बैठते चले जाते हैं, आधा घंटा भी आराम से क्यों नहीं बैठते, जैसे बच्चे देखो खाना खाने बैठते दो मिनट का इधर उधर जाते रहेंगे, बैठेंगे नहीं जगह पर, है ना, तो ऐसे ही योग में बैठे, योग माना आत्मा को खाना खिलाने का समय है ये, सवेरे शाम आधा घंटा आराम से बैठ, क्यों नहीं बैठते हैं, क्यों बीच में बैठे उठ के गए, योग लगता अपने आप नहीं लगाता, लगाना पड़ता है, जैसे किसी से फोन लगाना है तो नंबर डायल करना पड़ेगा ना, तब जाएगा ना, अपने आप तो फोन लगता नहीं है, तो यहां भी तो बाबा ने व्यवस्था बताया, बच्चे जब योग में बैठते हो न नींद न व्यर्थ न उठने की इच्छा न शरीर का भान कुछ भी नहीं रहेगा, आत्मचिंतन करो, आत्मा को जागृत करो, बैठते पांच मिनट पांच दस मिनट पहले बाबा को याद करने नहीं जाना, पहले आत्मा को तैयार करो, उड़ने वाला कौन जाने वाला कौन, क्योंकि आत्मा के विचार ही परमात्मा के पास पहुंचते हैं, ये अच्छी तरह से याद रखना, जब भी सवेरे शाम योग में बैठते हो पहले आत्मचिंतन करो, क्योंकि सारा दिन हम देह के भान में रहते, रहना पड़ता है, कर्म करते हो, शरीर दिखाई देता है, चाहते नहीं, बाबा कहते हैं सारे बीमारियों का दुखों का कारण देह बीमार है ना, वो अपने आप तो जाने वाला नहीं है ना, तो बैठ कम से कम योग में बैठे हुए पांच दस मिनट तक आत्मा का चिंतन करो, तो शरीर के कोई देहधारी के कोई विचार ही नहीं आएंगे, फिर परमात्मा चिंतन करो, देखना आधा घंटा आपको कहां गया पता नहीं चलेगा, अगर आत्मचिंतन नहीं किया, जरूर पाव दर्द कर रहा है और कुछ हो रहा है, कोई इधर ये याद आएगा वो याद आएगा, बहुत लोगों के हमारे साथ कर्म बंधन है, संबंध है नहीं, ऐसा नहीं एकदम जाएगा नहीं, तो आत्मा को जागृत करो, आत्मा का एक ही संबंध है, एक मेरा बाप दूसरा कोई नहीं, तो आत्मचिंतन जरूर चाहिए, तो इस विधि में बैठते हो ना पाव दर्द करेगा, न थकावट आएंगी, न नींद आएंगी, न व्यर्थ आएगा, फिर उसको हक भगाओ जरूरत ही नहीं है, तो विधि से सिद्धि प्राप्त होती है, तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विधि क्या, बैठते ही 10-15 मिनट तक आत्मचिंतन, आधा घंटा बैठो 15 मिनट आत्मचिंतन 15 मिनट परमात्मा चिंतन। अगर ये दो ही करते हो, बाबा ने कहा आत्मा समझ, मेरे से बात करो, आप और बाप तो माया कहां से आएंगे? अगर आप किस स्थिति में स्थित नहीं हो तो दूसरा घुस जाता है। व्यर्थ विकल्प आने का कारण हम आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होते हैं। मैं आत्मा को पता है, इतना नवे भाई है, मुझे पता है, दिखाई देता है, फिर भी मैं उसको पूछेंगे ना कि भाई जी आपका नाम, आप कहां से आए हो, आप क्या कर, अब ये कौन है समझ में आया, मैं कौन हूं आत्मा जानती है, आप अपने आप को जानते हो तो अपने आप से पूछो मैं कौन, कौन सी आत्मा हूं मैं। आत्मा तो देवात्मा हो, महात्मा हो, पुण्य आत्मा हो, पाप आत्मा हो, कौन सी आत्मा हो, हर एक अपने आप को जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता है। तो अपने आप से पूछो, तो आत्मचिंतन चाहिए। फिर पता चला मेरे अंदर ये है, इसको निकालने के लिए बाबा ने कहा पतित आत्मा को पावन करता हूं। तो उस इस प्रकार योग करते हो तो एक रस अवस्था, एक ही स्थिति में बैठ जाते हो, हिलेंगे डुलेंगे इधर उधर कुछ नहीं बनेंगे, एक रस अवस्था चाहिए विधि पूर्वक, तब बुद्धि स्वच्छ होती, उसको कहते हैं हंस, स्वच्छ बुद्धि, उसको बुद्धि के अंदर, उस बुद्धि के अंदर ज्ञान याद रहता है। तो ज्ञान याद है, संसार में बहुत कंकर है, बहुत व्यर्थ दिखाई देता, अंदर भी है, मन में आता है, तो बुद्धि तुरंत अपने आप को समझाती, कंकर को अलग करती है, अच्छी चीज ही लेती है, देखने में गलत चीज दिखाई देती कुछ, जैसे मार्केट में जाते हो फल लेते हो, जो मिला वो लेते नहीं हो ना, छाटते हो ना, सब्जी फल छाट के लेते, अच्छी चीज लेते हैं ना, यहां भी संसार में बहुत कुछ है। तो बुद्धि स्वच्छ अगर है, नहीं अगर बुद्धि के अंदर अपवित्रता है तो वहां ही चिपक जाती, देखना जैसे चुंबक किसको खींचता है, लोहे को, सोना भी एक मेटल है ना, सोने को खींचेगा, क्यों नहीं खींचता है, चुंबक लोहे से बना हुआ है। हमारी बुद्धि अगर अपवित्र है, गलत बातों पर ही ध्यान जाएगा, गलत बातें चिंतन में आएंगी, उसी का चिंतन चलेगा, उसी का वर्णन होगा। सारे दिन में इतना ज्ञान सुनते हो, इतना सब स्लोगन पढ़ते हो, वो कभी वर्णन में नहीं आएगा, किसी को कोई नहीं सुनाएंगे, बाकी हाँ इन्होंने ऐसे बोला, उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसा हुआ, वही सुनाएंगे ऐसे, इसको कहा व्यर्थ। तो वो जब बैठेंगे तो योग लगेगा, तो उसके मन में व्यर्थ ही ध्यान की दिया उसने, व्यर्थ पर अटेंशन दिया, व्यर्थ ही चलेगा। तो होली हंस बनना चाहिए, तब वो स्वयं पर कंट्रोल कर सकते, रूल कर सकते। दो शब्द बताया बहन जी, बता रहे थे कौन से है वो पीछे, हाँ हाँ, कंट्रोल कौन करेगा, किसके ऊपर करेंगे, रूल किसके ऊपर करेंगे, स्वयं के ऊपर, अपने को कंट्रोल, व्यर्थ संकल्पों से कंट्रोल करेंगे। किसी को देख के विचार आएगा नहीं, ऐसा नहीं सोचना है, कंट्रोल करेंगे, फिर रूल करेंगे कि ये नहीं करना, ऐसे करना है ना, अपने आप को पढ़ाएंगे। तो ये कंट्रोलिंग रूलिंग पावर किसके पास आएगा, जिसकी बुद्धि स्वच्छ है, स्वयं को कंट्रोल करेंगे। तो बाबा कहता है जो स्वयं पर कंट्रोल करता है, इसको कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। जो स्वयं को मैनेज करता है वो औरों को भी मैनेज कर सकता है, जिसको कहते हैं और एक भाषा में स्वराज, सो विश्वराज। स्वयं के ऊपर राज करो, स्वयं पर किस पर, मन, मन पर राज करो, मन को कंट्रोल, मन चंचल है, मन तूफान है का, मन एक घोड़ा है, उसको कौन कंट्रोल करेगा, जो बैठा हुआ मालिक, मालिक कौन, बुद्धि, बुद्धि के अंदर ज्ञान है। कितना भी मन चंचल हो, किसी किसी के आचरण व्यवहार देख के विचार आएगा, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं ऐसा नहीं सोचना है, ऐसा नहीं करना, वो उनका काम है, ये उनका ड्रामा में उसका पार्ट है, मेरा पढ़िए अपने आप को समझाना है। ऐसा कर सकते हैं, ऐसे पढ़ा सकते हैं, नहीं माताएं बताओ, भाई बताओ, कर्म करते करते सुनने के लिए अच्छा लगता है, सभी आपने सुना, मुरली भी सुनी, ऐसे पढ़ाते, हाँ हाँ हाँ, तो ये पढ़ाई तब कहेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे इसलिए, तो अपने आप को पढ़ाने वाला चीज, अगर अपने आप को पढ़ाते हो, समझात बात करते रहते हो, उसको कहा अंतर्मुखी, बाहर नहीं, बाहर नहीं बोलता है, अंदर अपने आप से बात करता रहता है, तो अच्छे अच्छे विचार आता है, वो व्यक्ति जो बाबा ने कहा सदा हर्षित रहता है, क्योंकि उसको अंदर व्यर्थ ही नहीं है, अंदर कांटा चुभता ही नहीं है, व्यर्थ विचार ही नहीं आएंगे तो मुरझाएगा क्यों, है ना। इसलिए सदा खुश रहेगा, अंदर खुशी उसको का अति इंद्रिय, शरीर की खुशी नहीं है, मुस्कुराना जोर से हंसेगा नहीं, खुश। जैसे देवताओं का एग्जाम्पल दिया, अंदर कोई नहीं, सब प्रकार से भरपूर, तो अंदर अच्छे विचार चलते हैं, वो मुस्कुराते रहते हैं। और तब उनको यहां जो लास्ट में वर्ष स्लोगन में सुनाया, क्या सुनाया कि उनको इस संसार में, पता है कलयुग में कोई वस्तु व्यक्ति वैभव किसी का आकर्षण नहीं, तब वो समझता है हम इस जीवन में इस शरीर में इस पुरानी दुनिया में मेहमान हैं, थोड़े दिन हैं, थोड़े दिन के बाद ये भी छोड़ देना है। हाँ, जब पता है ये स्मृति ये किसके अंदर रहेंगी, जिसके अंदर ये स्वच्छता है, तो वस्तु अंदर आत्मा भरपूर ज्ञान का चिंतन है, तो समझ है। बाबा कहता है कलयुग कल विनाश होने वाला है, अंतिम समय है, अंतिम जन्म है ये, कल भी कहा था बच्चे अंतिम जन्म में जो चाहते हो वो कमाई जमा कर लो। कल शरीर छूट गया, आप कहेंगे दूसरे जन्म में करेंगे, नहीं 10-15 साल तो कुछ नहीं होगा, 10-15 साल तो कैसे चला जाएगा, है ना। जो इस शरीर में रहते हुए अंतिम समय तक जितना करना चाहते हो, तो क्या क्या करना चाहते हो, आपके पास तीन ही चीजें हैं हरेक को। एक ज्ञान, ज्ञान का एक बूंद, भगवान के एक बूंद, बस रोज एक एक 30 दिन में 30 बूंद जमा हो जाएंगी, बहुत नहीं चाहिए, बहुत लोभ भी ठीक नहीं है, रखने के लिए भी जगह चाहिए ना। हाँ, फिर दूसरा योग में बैठते हो, बहुत योग भी नहीं चाहिए, सवेरे हमारी कलयुग की दुनिया के अंदर इस शरीर की ताकत है, बहुत पेट खाता है, मुझे भी बहुत खाना चाहिए, नहीं, हर एक की अपने ताकत है, पेट की कैपेसिटी है, कोई एक रोटी खाता है, दो रोटी खाता है, तो आप आधा घंटा आराम से बैठ सकते हो, बहुत लोभ नहीं करना, एक घंटा बैठना चाहिए, नींद आ रही है तो किसको दिखाने के लिए कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो योग, किसी को दिखाने के लिए नहीं, इससे बाबा की बेइज्जती होती है। जैसे देखो टीवी में भी शांतिवन में देखते हैं, योग में बैठते टीवी में सब दिखाई देता है, वो अरे इधर इधर सब लोग सारा विश्व देखता अभी, अरे योग में बैठ के नींद कर रहे है ना, तो स्कूल में पढ़ाई पढ़ते पढ़ते ऐसे करेंगे तो क्या होगा। तो आपके लिए नहीं, एक है हम आपके अपने लिए पुरुषार्थ करते हैं, एक औरों के लिए भी, सारा विश्व की नजर है कि भगवान इनको पढ़ाता है तो कैसे पढ़ाता है, वो देख के मानेंगे ना। तो क्लास में योग में बैठते हो, थोड़ा समय बैठो, आधा घंटा ही बैठो विधि पूर्वक, कोई किधर बैठा कोई किधर बैठा, ब्रह्मा का नए शिविर वालों को पता नहीं चलता, आप सब बाबा के बच्चे हो, सेंटर में जाते हो, सेंटर में किधर से भी घुसते हो, नहीं दस नियम है, आराम से समय पर आओ, विधि पूर्वक बैठो, विधि पूर्वक उठो, हाँ जब भी उठ के गए मैं पुरुषार्थ करो, अभ्यास करो, मुझे बैठ करके तपस्या करने है ना, अपने लिए करो किसी के लिए नहीं, तो ये कमाई सारे कल्प में काम में आएंगे, है ना। तब बाबा ने कहा अगर ऐसा व्यक्ति है तो वो इस शरीर में रहते हुए क्या समझता है, मेहमान, मेहमान को कुछ इच्छा होगा, ये बहुत अच्छा सोफा है मुझे चाहिए, ऐसा कहेगा नहीं, तो उसको कोई वस्तु व्यक्ति वैभव मान शान कुछ नहीं, सब खत्म होने वाला है, तो कोई वस्तु व्यक्ति की तरफ आकर्षण नहीं होगा, स्वयं संतुष्ट रहेगा, जिसके अंदर ज्ञान चलता रहता है। नहीं तो ये पर्स चाहिए, ये मोबाइल चाहिए, ये चीज चाहिए, कोई वस्तु व्यक्ति वैभव अगर आकर्षण है तो वो योग में स्थिर बैठ नहीं सकते हैं। देखो इसलिए आपके लिए लाल लाइट हो गया, अब योग में बैठ के दिखाओ किस किस को नींद आती है देखना, हाँ किस किस की आंखें बंद हो जाती है, 9:30 बजे सोते हो, नहीं अभी भी माताओं का नींद आ रही है किसी किसी को, नहीं अच्छा देख लो अभी कौन आंखें बंद करते हैं, हाँ अच्छे तरह से बैठो, पहले आत्मचिंतन करना, मुरली का चिंतन करो,